ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
अचला के विवाह के दिन एक बार अपनी सूरत दिखाने के बाद सुरेश कहां गायब हो गया इसका किसी को पता नहीं चला। विवाह के बाद दो एक दिन अचला के मन में दुविधा बनी रही, किंतु अपनी बुआ से मिले परामर्श से उसका मनोबल काफी बढ़ गया। महीम पहले की तरह गंभीर बना हुआ था। यूं तो वो सुख दुख से मिलने वाले आनंद विषाद से बहुत ऊपर उठ चुका था, फिर भी सुखद अनुभूति के क्षणों में उसके चेहरे पर उभरी आभा को देखकर अचला भाव विभोर हो जाती थी और अपने भाग्य को सराहती हुई भगवान से कहती थी, आपके किए पर मैं पूर्ण संतुष्ट हूं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूं। मैं प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहने का आपको विश्वास दिलाती हूं। मेरे पति का घर मेरे लिए राजमहल ही नहीं अपितु बैकुंठ है। अचला को विदा करते समय केदार बाबू ने अपने बहते आंसुओं को पोछा और लड़की को शिक्षा देते हुए बोले, बेटी, सुख दुख में और अच्छे बुरे समय में पति का साथ निभाना और अपने कर्तव्य पालन से कभी मुंह ना मोड़ना। भगवान तुम दोनों को सुखी और प्रसन्न रखे, तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल हो, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है। कहते और बिलकते हुए वे दूसरे कमरे में चले गए। सावन की दोपहरी में बादलों से घिरे आकाश के नीचे तंग संकरी और कीचड़ भरी गांव की पगडंडी से पालकी में बैठी और ढोई जाती हुई अचला जब अपने ससुराल पहुंची तो रास्ते की गंदगी दुर्गंध और दूषित परिवेश ने उसे एकदम खिन्न और उदास बना दिया था। यहां तक कि उसके विवाह का उल्लास भी जाता रहा था। अचला ने पुस्तकों में गांव की दुर्दशा का वर्णन अवश्य पढ़ा था, किंतु दुख और गरीबी का चित्रण कविता के उत्कर्ष और कल्पना की कोमलता में दबकर रह गया था। अब जब वो पालकी से उतरकर घर के भीतर पहुंची तो प्रत्यक्ष उसके सामने मुंह बाए खड़ा था, जो एकदम सूना आनंद रहित और बिल्कुल भी रुचिकर नहीं था। ये यथार्थ कल्पना से एकदम अलग था। मिट्टी के कच्चे घर थे जिनमें नमी, अंधेरा और घुटन थी। घरों के दरवाजे जंगले इतने नीचे थे कि बिना झुके चलने पर सिर का टकराना पक्का था। छत क्या थी, बांस और खपचियों का बना छप्पर था। ऐसे भद्दे गंदे और बिना सुविधाजनक घर की तो उसने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। वो सोच में पड़ गई कि ऐसे गंदे घर और घिनौने परिवेश में ना जाने कितने दिन बिताने पड़ेंगे। ये सब सोचते हुए अचला का दिल भुज गया और सारी खुशी काफुर हो गई। यहां तक कि इस समय पति का सुख भी उसके मन को मायाजाल जैसा ही भ्रामक लगा। उसे इस बात पर भी आश्चर्य था कि घर में सास ससुर ननद भौजाई जैसा कोई भी सगा संबंधी नहीं। दूसरे मोहल्ले के अपने घर से आई दूर के नाते की एक दादी वर वधु के गृह प्रवेश की रस्म पूरी करने लगी, किंतु अचला के शरीर पर कोई सजावट वेशभूषा या गहना आदि ना देखकर बुढ़िया एकदम हक्का बक्का बनी खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ देर में संभली दादी ने अचला का हाथ पकड़कर उसे गृह प्रवेश करवाया। बहू को देखने आई गांव की स्त्रियां उसकी आयु के संबंध में कानाफूसी करने लगी। जाति जाति उन स्त्रियों के मुंह से निकले मलेच्छा और ब्राह्मण समाजी आदि शब्द भी अचला को सुनने को मिले। महीम के विवाह से पहले ही मलेच्छ कन्या से उसके संबंध की बात जानकर गांव भर में उसके विरुद्ध आंदोलन तक हो चुका था। निंदा प्रस्ताव पारित किए जा चुके थे। अब अचला के आ जाने से सच सामने था, जिसका अर्थ था निंदा के बाजार का गर्म होना। पड़ोसी महिलाओं के चले जाने के बाद दादी बोली, बहू, घर जाना है और घर में छोटी नातिन है, बिना गए काम नहीं चलेगा, इसीलिए अब मैं चलती हूं। कहती हुई उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो चल दी। अचला समझ गई कि वास्तव में जग दादी थी और अपने इस परिचय को बताने के लिए वो अभी तक रुकी हुई थी। यदि उसे गांव में फैली इस अफवाह की सच्चाई का कुछ भी अनुमान होता तो वो शायद भूल कर भी वहां पैर ना रखती। कारण स्पष्ट था, गांव में रहकर गांव वालों से मतभेद रखने का अर्थ था कि अपने को समाज और जाति से बहिष्कृत होने का रास्ता स्वयं साफ करना। जगदादी के चले जाने पर घर में बचे थे नौकर यदु, उड़िया रसोईया और कलकत्ता से अचला के साथ उसके मायके से आई दासी हरिया की मां। सूना घर खाने को दौड़ता था। तेज वर्षा अभी अभी थमी क्या थी, बूंदाबांदी के रूप में बदल गई थी। हरिया की मां ने अचला से कहा, बिटिया यहां तो कोई आदमी दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा घर पहली बार देखा है। हक्की बक्की बनी और सिर झुकाई बैठी अचला के लिए मुंह खोलना संभव ना हुआ। वो बेचारी करके रह गई। हरिया की मां ने कहा, जवाई बाबू भी एक बार अपनी सूरत दिखाकर नदारद हो गए हैं। इसका भी अचला के पास कोई उत्तर नहीं था। इस सुनसान बियाबान जैसे गांव को देखकर हरिया की मां भले ही कितनी अधिक परेशान क्यों ना हुई हो, किंतु उसे बचपन से पाली गई अचला के दिल को दुखाना और उसे परेशान करना बिल्कुल भी गवारा ना हुआ। इसीलिए हौसला देती हुई हरिया की मां बोली, डर चिंता की कोई बात नहीं, घर में ही बैठे हैं, कोई सड़क पर नहीं बैठे, जवाई बाबू के आने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम कपड़े बदल लो, मैं बक्सा खोलकर कपड़े निकाल देती हूं। पहले की भांति सिर नीचे झुकाई बैठी अचला धीमी आवाज में बोली, हरिया की मां जल्दी मत करो, थोड़ा और रुक जाओ। वास्तव में वो इस परिवेश और व्यवहार से अपने को एकदम टूट चुका अनुभव कर रही थी। इसी बीच जोर की बरसात शुरू हो जाने से चारों ओर अंधकार छा गया। सावन के घने बादलों के घिर आने से छाए अंधेरे के कारण दिन के ढलने का पता ही नहीं चल सका, और फिर मन की निराशा के साथ साथ रात का अंधेरा और सूनापन भी बढ़ने लगा। लैंप रखने के लिए आए नौकर यदु से हरिया की मां ने पूछा, जवाई बाबू कहाँ है, क्या मालूम। उत्तर सुनकर घबराई और परेशानी महसूस करती हुई हरिया की मां तीखी और कठोर आवाज में बोली, क्या मालूम का क्या अर्थ है, क्या वे बाहर नहीं है। नहीं कहकर जाते यदु के व्यवहार से स्पष्ट था कि वो नए लोगों के आने से प्रसन्न नहीं था, इसीलिए हरिया की मां का व्याकुल होना स्वाभाविक था। वो बेचैनी और परेशानी अनुभव करती हुई अचला के पास आकर घबराई आवाज में बोली, मुझे यहां के रंग ढंग अच्छे नहीं लग रहे, कहो तो दरवाजे पर कुंडी लगा दूं। आश्चर्य प्रकट करते हुए अचला ने पूछा, क्या आवश्यकता है। हरिया की मां ने बचपन में गांव छोड़ा था, तो फिर उसका वहां जाना नहीं हुआ, कलकत्ता में ही उसका सारा जीवन बीता है, किंतु गांव में चोरी डकैती छीना झपटी सीना जोरी और औरतों के साथ बदतमीजी की सुनी सुनाई घटनाओं की धुंधली याद उसके दिमाग में अभी तक बनी हुई थी। इसलिए वो बाहर बढ़ते हुए अंधकार से घबराकर अचला की ढाल बनकर उससे सटकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, ठेठ देहात है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहती हुई हरिया की मां कांपने लगी। ठीक उसी समय दादी जी कहां है, किरट लगाती हुई और पानी में भीगती हुई 20-22 साल की एक दुबली पतली और छरहरे बदन की लड़की दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। आते ही बोली, दादी आपको नमस्कार करने के बाद ही कपड़े बदलूंगी। कहती हुई उस युवती ने अचला के चरणों पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और फिर लालटेन को ऊपर उठाकर उसके प्रकाश में काफी देर तक अचला का मुंह देखकर चिल्ला उठी, बाप रे बाप। सबको पहुंचाने के बाद इस लड़की को लाने के लिए दूसरे गांव गए और वहां से खाली हाथ लौटे महीम ने उत्तर दिया, क्या है री मृणाल, जरा यहां आओ तो बताऊं। दरवाजे के पास होकर महीम बोला, हां बताओ। लालटेन के उजाले में एक बार फिर से अचला के मुख को देखती हुई और मुस्कुराती हुई मृणाल बोली, बधाई हो, मुझसे विवाह करते सचमुच ही घाटे में रहते, निसंदेह बड़ी सुंदर भाभी लाए हो। बाहर खड़ा होकर मृणाल को डांटता हुआ महीम बोला, क्या तू अपनी शैतानी से कभी बाज नहीं आएगी, अब अपने हंसी मजाक को छोड़। नहीं मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूं, कसम खाकर कहती हूं कि भाभी तो चांद का टुकड़ा है। फिर अचला की ओर देखती हुई वो बोली, एक समय मैं ही इनकी लैला थी, अपने मियां से पूछ लो, मैं कोई गप नहीं उड़ा रही हूं। महीम बोला, तू बकती रह, मैं बाहर चला। मृणाल बोली, तुम्हें किसी ने बांध रखा है क्या, जाते हो तो जाओ। फिर अचला की ठोड़ी को पकड़ती हुई वो बोली, भाभी एक दिन मैं ही इस घर की मालकिन होने वाली थी, किंतु मेरे प्राणों की शत्रु मेरी अपनी सगी माँ ने इन्हें ना जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी कि मैं जो इनकी आंख का तारा थी अचानक आंख की किरकिरी बन गई। क्या मेरे मन में इस समय ईर्ष्या का जागना स्वाभाविक नहीं? अरे ओ जदुआ, घोषाल जी कहां चले गए हैं?
यदु बोला,
मुंह हाथ धोने तालाब की ओर गए हैं। इस अंधेरे में तालाब की ओर?
कहती हुई मृणाल के मुस्कुराते चेहरे पर चिंता की उभरी रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ देर के बाद लज्जित होने का अभिनय करती हुई मृणाल बोली,
भाभी मेरा दुर्भाग्य भी देखो, 72 साल के एक बूढ़े को कहीं से ढूंढकर मेरे मत्थे मढ़ दिया गया है। उसे संभालते और उसकी सेवा करते मेरी जिंदगी मिट्टी होती जा रही है। दिन रात अपनी माँ को और अपनी किस्मत लिखने वाले को कोसती रहती हूँ। अच्छा, पहले उस कोठरी में जाकर कपड़े बदल आती हूँ, फिर बातचीत होती रहेगी। मुझे अपनी सोच समझकर रूठने का मन ना बनाना, नहीं तो घाटे में रहोगी और बाद में पछताओगी। कहो तो अपने बुढ़े में भी तुम्हारा हिस्सा रख दूं? कहती और अपनी मुस्कान से सूने परिवेश को मोहक रूप देती उछलती कूदती हुई मृणाल दूसरे कमरे को चल दी। अचला के लिए इस प्रकार के खुले और बेबाक हंसी मजाक को सुनने का यह पहला अवसर था। उसे यह सब एकदम भद्दा लगा। किसी स्त्री का इस प्रकार निर्लज और मुंहफट होना उसकी कल्पना से बाहर था। उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके संस्कार, उसका चरित्र और उसकी सामाजिक मर्यादा, यह सब मृणाल की बकबक को किसी भी रूप में उचित मानने को तैयार नहीं थे। फिर भी उसे ऐसा अवश्य लगा कि इस लड़की के चुलबुलेपन के कारण तनाव से भरा वातावरण कुछ हल्का और सामान्य अवश्य हो गया था। इसलिए अचला उस लड़की का परिचय कौन है, कहां रहती है, महीम से इसका क्या नाता है और यहां क्या करने आई है, ये सब पाने को उत्सुक हो उठी। हरिया की मां ने प्रसन्न भाव से पूछा, बिटिया कौन है ये लड़की, बड़ी चुलबुली और खुशमिजाज लगती है।
अचला ने सिर हिलाकर कहा, हां। भीगे कपड़ों की जगह नए सूखे कपड़े पहनकर कमरे में आई मृणाल बोली,
भाभी पहले मुझे अपना परिचय देना चाहिए, वो दिए बिना मैं हंसी मजाक करने लगी। वैसे अपना परिचय देने के लिए मेरे पास है ही क्या, फिर भी कहती हूं। सुनो, आपके दूल्हा मेरी मां के पालक होने से मेरे बाप होते हैं, इसलिए मैं इन्हें शुरू से ही दादा कहती आई हूं। सारी कहानी कुछ इस प्रकार है, आपके ससुर और मेरे पिताजी गहरे मित्र थे। एक दिन अचानक मेरे पिता के गाड़ी के नीचे आ जाने से, हाथ के टूट जाने और उसके फलस्वरूप उनकी नौकरी छूट जाने पर आपके ससुर ने हमें सहारा दिया और अपने पास रख लिया। उसके बहुत दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के समय दादा की आयु कुछ 8 साल की थी। इनको जन्म देते ही इनकी मां स्वर्ग सिधार गई थी। इनसे पहले जन्मे इनके 2 बड़े भाई डिप्थीरिया की बलि चढ़ चुके थे, इसीलिए इनके घर की मालकिन मेरी मां बन गई। कुछ समय बाद मेरे पिता भी चल बसे, किंतु फिर भी हम लोग यहीं बने रहे। अभी पलासी के घोषालों के परिवार में 5 साल पहले मेरा विवाह करके मुझे यहां से चलता कर दिया गया है। मां जीवित होती तो इस घर पर मेरा भी कुछ जोर रहता। इसी बीच किसी नाटे और गोरे भले आदमी ने दरवाजे के पास से आवाज दी,
बड़ी बहू क्या इस कमरे में हो?
आओ आओ,
पुकारती हुई मृणाल अचला की ओर उन्मुख होकर बोली,
ये है मेरे पति देव।
भाभी आप ही बताओ कि इस 72 साल के बुढ़े के साथ मैं भला जश्ती हूं क्या? इस जन्म की जवानी और सुंदरता के साथ मेरी सारी हसरतें मिट्टी में मिल गई हैं। अचला से उत्तर देते ना बना, इसलिए लज्जा में उसने अपना सिर नीचे झुका लिया।
ये है भवानी घोषाल। भीतर आए घोषाल बाबू हंसकर बोले,
दादी जी इस झूठी की किसी बात पर विश्वास न करना, इसने मुझे सबकी नजरों में गिराने और जलील करने का बीड़ा उठा रखा है।
अन्यथा मेरी उम्र तो अभी 52-53। बीच में ही उसे टोकती हुई मृणाल बोली,
क्या झूठ बोलते हुए तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं आती? अरे पता नहीं किस जन्म का बदला मुझसे लेना था, जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा आप ही बताओ भाभी, क्या इस बुढ़े के साथ मुझे ब्याहने की बजाय चुपचाप गंगा में डुबो देना ज्यादा अच्छा ना होता?
चुपचाप बैठी अचला का चेहरा लाल सुर्ख हो उठा। कुछ देर तक लज्जा से झुके अचला के चेहरे पर देखते घोषाल बाबू गहरी सांस लेते हुए बोले,
दादी जी आपने इस लड़की का घमंड तोड़कर मेरी इज्जत बचा ली है। अपने रूप सौंदर्य पर इतराती ये ससुरी तो अपने को उर्वशी समझती थी और किसी दूसरी स्त्री को कुछ गिनती ही नहीं थी।
मृणाल को संबोधित करते हुए घोषाल बाबू बोले,
देख मूर्ख स्त्री, आंख खोलकर देख, रूप किसे कहते हैं और अच्छे से सजना क्या होता है। अब तक रंगी गीदड़ी अपने को शेरनी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाती फिरती थी।
मृणाल बोली, बड़े आए मेरा घमंड चूर करने वाले। अरे मेरा रूप सौंदर्य का गर्व अपने स्थान पर कायम है, उसके दलन का दम किसी में नहीं। ये कहती हुई शरारती स्त्री ने पति को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाया, जिसे अचला ने साफ तौर पर देख लिया।
घोषाल बोला,
दादी जी देख लिया ना इसका व्यवहार और आचरण, देखिए आप भूल कर भी इसका अनुकरण ना कीजिएगा। मैं 72 साल का बूढ़ा ठहरा, क्या पता कब चलता बनूं। आप लोगों ने तो पूरा जीवन जीना है, इसलिए गलती से भी अपने पति का अपमान ना करना। बस अपने शुभचिंतक बूढ़े की इस शिक्षा को ना भूलने का आपसे अनुरोध है।
महीम बोला, मृणाल तुम्हें रात भर इसी प्रकार उद्यम मचाते रहना है क्या?
और क्या करना है,
जरा रसोई घर की ओर भी देख लो।
उछलती हुई मृणाल बोली, क्षमा करना दादा, भूल हो गई, खाने पीने की बात दिमाग से ही उतर गई, रसोई घर में मुझे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा आप लोग बाहर जाओ, हम उधर ही जा रही हैं।
तुम अपने साथ और किसे ले जाओगी?
दादी जी को, और किसे?
फिर अचला की ओर देखती हुई बोली,
भाभी अब जब मैं आ गई हूं तो आपको रसोई की सारी जानकारी देकर ही जाऊंगी।
महीम और भवानी के बाहर चले जाने पर मृणाल बोली,
भाभी मैं एक दिन पहले ही घर में आ जाना चाहती थी, किंतु बुढ़िया सास के डर से घर को छोड़ नहीं सकी।
अच्छा आप कपड़े बदल लो, मैं आकर आपको वहां ले चलती हूं। कहती हुई मृणाल झटपट रसोई घर की ओर चल दी। वर्षा के थम जाने और बादलों के छट जाने से स्वस्थ आकाश में नौमी तिथि के चांद की चांदनी बड़ी सुहावनी लग रही थी। रसोई की सारी व्यवस्था को ठीक करके अचला के पास लौटी हुई मृणाल बोली,
संबंध की दृष्टि से मुझे आपको दादी पुकारना चाहिए, किंतु मैं प्रारंभ से ही आपको भाभी पुकारती आ रही हूं, कहीं ये संबोधन आपको अप्रिय तो नहीं लग रहा?
नहीं बिल्कुल नहीं, यही संबोधन ठीक है।
मृणाल बोली, रिश्ते में आप मुझसे बड़ी हैं, किंतु मैं आयु में बड़ी हूं, इसलिए मैं चाहती हूं आप मुझे मृणाल दीदी कहकर पुकारें।
अचला बोली, ठीक है, किंतु ये आप क्या लगा रखा है?
संशोधन के सुझाव को स्वीकार करती हुई मृणाल बोली, आज तुमने रसोई घर देख लिया, कल भंडार की चाबी तुम्हें दे दूंगी।
मुझे चाबी की कोई आवश्यकता नहीं।
क्यों आवश्यकता नहीं, ये भी कोई बात हुई? गृहिणी के लिए तो भंडार उसका साम्राज्य है, उस पर अधिकार का अवसर सभी स्त्रियों को कहां सुलभ होता है।
अचला बोली, मुझे इस साम्राज्य को पाने का कोई मोह नहीं, मुझे तो तुम भाग गई हो और अब मैं तुम्हारा पिंड छोड़ने वाली नहीं।
अचला को अपनी बाहों में समेटती हुई मृणाल बोली, सोच लो भाभी, स्त्रियां सोत का स्वागत झाड़ू मारकर उन्हें भगाने से करती हैं, और एक तुम हो कि उससे दोस्ती बांधना चाहती हो।
अचला बोली, देखो इस बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता, क्या यहां सभी स्त्रियां ऐसा हंसी मजाक करती हैं?
हंसती हुई मृणाल बोली, नहीं और कोई स्त्री मेरी तरह नहीं हंसती, वास्तव में भगवान सबको सब कुछ नहीं देता।
अचला बोली, हंसी का अवसर उपस्थित होने पर भी हमारे लिए हल्की फुल्की बात कहना संभव नहीं होता, वास्तव में कलकत्ता की अधिकांश भद्र महिलाएं किसी महिला के मुंह से ऐसी बात सुनने की कल्पना ही नहीं कर सकती। बिना लज्जित हुए मृणाल ने अचला को अपनी छाती से चिपका लिया और फिर बोली,
अच्छा तुम्हारी शहरी स्त्रियां क्या अपनी किसी सहेली का इस प्रकार से आलिंगन कर सकती हैं?
अरे भाभी, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूं, सब कोई सब काम नहीं कर सकता है।
अब देखो ना, तुम्हारा मेरा कितनी देर का परिचय है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे हम दोनों सगी बहनें हो और एक बहन दूसरी बहन से मिल गई हो? अब जब मैंने तुम्हें बहन बनाया है, तुम उससे जीवन भर इस संबंध को निभाना और इसका प्रमाण देना पड़ेगा। यहां हंसी मजाक से काम चलने वाला नहीं।
सुशिक्षिता अचला ने गांव की इस धरती पर भिन्न दिशा से अपने जीवन के चलने के सत्य को समझ लिया था, इसलिए इस अवसर का उपयोग करती हुई और परिहास को गंभीरता से लेती हुई अचला ने पूछा,
दीदी क्या जीवन भर इसका प्रमाण जुटाने का भार तुम अपने कंधों पर लादे फिरोगी?
मृणाल बोली, ये गांव है, शहर नहीं। यहां आने के लिए मर मिटना साधारण बात है, अधिक सोचा नहीं जाता। जब तुम्हें वचन दे दिया है तो इसे निभाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
इस विषय को आगे बढ़ाना उचित ना समझती हुई अचला विषय बदल कर बोली, यह भी वचन दे दो कि मुझे अकेला छोड़कर जल्दी से भाग नहीं जाओगी।
भाभी, क्या तुम मुझे एकदम मूर्ख समझती हो? मैंने कह दिया है कि भंडार की चाबी तुम्हारे हवाले करके ही जाऊंगी।
चाबी संभालने में मुझे रत्ती भर भी रुचि नहीं है।
रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी, इस बात का भी प्रयत्न करूंगी, किंतु मेरी अपनी बहुत बड़ी गृहस्थी है और मेरे सिर पर भारी दायित्व है, इसलिए मेरा अधिक समय तक यहां रुकना नहीं हो सकेगा।
ये सब मैं नहीं जानती।
हैरान हुई मृणाल ने पूछा, क्या दादा ने तुम्हें पहले कुछ नहीं बताया?
अचला बोली, नहीं, घर की सारी बातें तो उन्होंने पूरे विस्तार से बताई हैं, किंतु तुम्हारे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के संबंध में कुछ भी नहीं बताया।
उदास हुई मृणाल ने पूछा, उन्होंने यही ठीक समझा होगा?
कुछ देर तक चुप बैठी अचला ने पूछा, इनकी सगाई तुम्हारे साथ तय हुई थी?
उदास मन से मृणाल बोली, हां।
अचला बोली, फिर विघ्न कैसे पड़ गया? संबंध जुड़ जाता तो अच्छा ही होता।
अचला के चेहरे पर देखती हुई मृणाल बोली, जो विधि विधान में नहीं वो कैसे हो सकता था?
अचला ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा इनसे रक्त संबंध तो था नहीं, फिर संबंध के सिरे ना चढ़ने का कारण क्या था?
बचपन के प्रेम की उपेक्षा अच्छी बात नहीं होती। अचला की उत्सुकता मृणाल के हृदय को भेद गई। काफी देर तक अचला के चेहरे पर देखते रहने के बाद वो बोली,
भाभी तुम क्या सोचती थी, बचपन के प्रेम की सब कहीं ऐसी परिणति होती है, विवाह एक जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का संबंध है। मुझे जिसकी दासी होना चाहिए था उसी के हाथ में भगवान ने मुझे सौंपा है। व्यक्ति के चाहने ना चाहने से यहां कुछ होने से तो रहा।
अपने को लज्जित अनुभव करती हुई अचला बोली, जी जी, मेरे पूछने का उद्देश्य भी यही था। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचला का चेहरा लज्जा से लाल हो गया, जिसे देखकर उसके हाथ को अपने हाथ में थामती हुई मृणाल बोली,
भाभी तुम्हें ये पति रूप में अब मिले हैं, किंतु मैं तो पिछले 5 सालों से अपने पति की सेवा कर रही हूं, इसलिए मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, पति को अपने मन के अनुकूल ढालने और छलने की चेष्टा कभी मत करना, क्योंकि इससे हानि स्त्री की ही होती है। मैं सोचती हूं कि पति के सामने स्त्री की हार अच्छी, जीत एकदम बुरी है।
उसी समय यदु ने रसोई तैयार होने की सूचना दी,
चल हम आती हैं, कहकर मृणाल ने यदु को विदा किया और फिर अचला को अपनी ओर खींचकर प्यार से उसके गालों को चूम लिया।
भाभी, आवाज सुनकर अचला तेजी से रसोई से निकलकर कमरे में आ गई, साड़ी का पल्लू कमर में बांधकर और दराज वाली मेज को खींचकर उसे सही जगह पर रखने की कोशिश में लगी मृणाल अचला को देखते ही बिफर कर चिल्लाने लगी,
क्यों री, तू साहब जरमाती रहेगी और मैं नौकरानी बनी तुम्हारे सोने के कमरे को झाड़ने बुहारने और सजाने में पिसती रहूंगी।
कहती हुई वो झाड़ू से कमरे के कोने साफ करने लगी। मृणाल ने गुस्सा होने और गाली बकने का अभिनय करने की ठान तो ली, किंतु गंभीरता को बनाए रखना उसके लिए संभव ना हुआ। इसीलिए वो अपनी हंसी रोकने में असफल हो गई और जोर से खिलखिलाने लगी। कोलाहल और चिल्लाहट सुनकर भागी दौड़ी आई हरिया की मां बोली,
जी जी, घर में इतने नौकर नौकरानियों के होते हुए सफाई जैसे छोटे कामों में खुद जुट जाने का क्या तुक है? दीदी ने आज तक कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाया, आप उससे गांव की स्त्रियों के समान झाड़ने बुहारने की आशा कैसे कर सकती हैं? आप छोड़िए, मैं सब निपटा दूंगी।
झाड़ू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हरिया की मां को डांटती हुई मृणाल बोली,
रहने दे, पहले मुझे ये बता, क्या तू दीदी को मुझसे कुछ ज्यादा जानती है जो मेरे सामने उसका पक्ष लेकर मुझसे बहस कर रही है?
अचला के हाथ में झाड़ू थमाती हुई मृणाल हरिया की मां से बोली,
तेरी दीदी करने पर आ जाए तो गांव की स्त्रियां देखती रह जाएंगी, मैं तो कहती हूं कि उन्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी।
फिर अचला से उन्मुख होकर वो बोली,
उस कोने को साफ करके अपनी चतुराई का प्रमाण दे दो।
आज्ञा का पालन करती हुई अचला ने पूछा, जी जी, तुमने ये जादूगरी कहां से सीखी? हैरानी प्रकट करती हुई मृणाल बोली,
ये क्या कहती हो?
अचला बोली, मुझ स्त्री के हाथ में झाड़ू पकड़ाना और मुझसे सफाई करवाना जादूगरी नहीं तो क्या है?
मृणाल बोली, अपना घर आप साफ नहीं करोगी तो क्या इसके लिए पड़ोसियों को बुलाओगी? अब बातों में समय ना गवाकर जल्दी से काम निपटाओ।
काम करती हुई अचला ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं किस मनहूस से पाला पड़ा है, ना खुद आराम से बैठती है और ना दूसरों को आराम करने देती है। सच तो यह है कि पिछले 5-6 दिनों में तुमने मुझसे इतना अधिक काम कराया है कि चाय बागान के मालिक अपने कुलियों से भी शायद इतना काम ना लेते होंगे। अचला की ठोड़ी को प्यार से छूती हुई मृणाल बोली,
गृह लक्ष्मी द्वारा घर की सफाई करने से ही तो घर में लक्ष्मी का आगमन और वास होता है। दीदी, मेहनत की बात ना करो, अपने स्त्री जीवन को उसी दिन सार्थक समझना जिस दिन पति पुत्र और घर गृहस्थी के कामों में नहाने धोने और खाने पीने तक का समय नहीं मिलेगा। मैं भगवान से तुम्हें वो शुभ घड़ी जल्दी दिखाने की प्रार्थना करती हूं। अभी परिश्रम के दिन देखने हैं तुम्हें मालकिन, कहकर हंसने की इच्छा होने पर भी मृणाल के होठ चिपक कर रह गए। भावुकतावश हरिया की मां रोने लगी और रोती हुई बोली,
जी जी, तुम्हारी इस आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरिया की मां को अचानक अचला की मां की याद हो आई। वो भली औरत इस बच्ची को उसे सौंपकर जवानी में ही यमलोक को प्रस्थान कर गई। वही लड़की अब युवती बनी पति के घर के दायित्व को संभालने चली है। खींचती हुई मृणाल बोली,
बात बात पर रोने लगती हो, यह कोई अच्छी बात है क्या?
जी जी, ये खुशी के आंसू हैं। सोचती हूं यदि तुमसे भेंट ना होती तो क्या इस गमई गांव में हमारे लिए एक दिन भी काटना संभव हो पाता?
6 दिनों से आई मृणाल घर की तो क्या कहने, बस चलने पर वो घर वालों की शक्ल सूरत को बदलने और उसे नया रूप देने पर आमादा है। मृणाल के साथ को अत्यधिक प्रसन्न करती हुई अचला उसके मुख से जाने की बात सुनकर अत्यधिक व्यथित हो उठती थी। वास्तव में मृणाल के पास अनुभव का विशाल भंडारा था जिसका लाभ उठाकर अचला अपने गृहस्थ को सार्थक बनाना और उसे आदर्श रूप देना चाहती थी। इसके अलावा मृणाल किसी अनजाने तिलिस्म से अलग न थी। अचला को हर रोज मृणाल के व्यक्तित्व के नए नए रूप और पक्ष देखने को मिलते थे जिससे वो हमेशा आश्चर्यचकित रह जाती थी। मृणाल की आर्थिक स्थिति का अनुमान उसके आभूषण विहीन अंगों, हाथों की कलाइयां, गला, सिर और कमर आदि को देखकर लगाया जा सकता था। फिर एकदम अपने अयोग्य, असमर्थ, अस्वस्थ और वृद्ध पति की सेवा, पूरे घर को संभालने जैसी कमर तोड़ मेहनत और उस पर बूढ़ी सास की डांट फटकार सहकर भी मुस्कुरा पाना, इस प्रकार हंसकर यथार्थ को झेलना मृणाल जैसे स्त्री के ही बस की बात थी। अचला को लगता था कि उसने पानी में रहकर भी पानी के उतार चढ़ाव से अलग रहने वाले कमल के विषय में सुना अवश्य है, किंतु वो तो जड़ पौधा है
और यहां ये मृणाल हाड़ मास का पुतला है। सच तो ये है कि सुख दुख मान अपमान और प्रिय अप्रिय के भेदभाव से ऊपर उठकर एक रास्ता से जीवन को जीने वाली केवल इस मृणाल को ही उसने अपने जीवन में देखा है। मृणाल पढ़ी लिखी नहीं, नगर की चकाचौंध से भी कदाचित अपरिचित है। गरीबी में पली बड़ी और गरीब घर में ही ब्याही गई है। दिन रात मेहनत की चक्की में पिस रही है, फिर भी ना तो उसके मुंह में कोई शिकायत है और ना ही दिल में किसी प्रकार का कोई मलाल है। कठोर जीवन को सहज भाव से जिए जा रही है। यद्यपि उसके द्वारा किए गए कार्यों को करने में अचला ना तो अभ्यस्त है और ना ही इस क्षेत्र में उसका परिचय है, फिर भी इन कामों से कतराना या फिर जी चुराना उसे लज्जाजनक ही नहीं अपितु अशोभनीय लगता है। उसे इस बात पर आश्चर्य था कि ये मृणाल ना जाने किस मिट्टी की बनी है। अपने भाग्य को कोसने और भगवान को कुछ भी कहने के लिए उसके पास समय नहीं है। अपने दुख शोक को हंसी मजाक में उड़ाकर मानो वो दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती जा रही है। ऐसी देवी के मुख से उसके चले जाने की बात को सुनते ही अचला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो सोच में पड़ गई कि उसकी अनुपस्थिति में वो इस सूने गांव और मटमैले घर में किस प्रकार रह सकेगी। उसके लिए एक पल बिताना भी कठिन हो जाएगा। शाम होने पर उपयुक्त अवसर देखकर अचला स्नेह और मनुहार भरी वाणी में मृणाल से बोली, जी जी, मैंने सुना है कि पीहर में आने पर कोई स्त्री ससुराल जाने का नाम तक नहीं लेती। एक तुम हो कि दो ही दिन में उब गई हो। देखो, जब तक मैं यहां हूं कलकत्ता लौट कर नहीं जाती, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यहां मेरे साथ ही रहना होगा। अपनी विवशता जतलाती हुई मृणाल बोली, क्या करूं दीदी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। बूढ़ी सास ना मरती है और ना मुझे घड़ी भर के लिए सांस लेने देती है। मैं कहती हूं अभी तेरा बेटा 60 का होने को है, तू कब तक धरती का भार बनी रहेगी? क्या अपने बेटे को खाकर मरेगी? दीदी क्या बताऊं, खांसती खांसती अधमरी हो जाती है, किंतु आभागिन का फल भोग पूरा ही नहीं हुआ लगता। हंसती हुई अचला बोली, उससे शायद तुम अच्छी नहीं लगती हो। मुझे तो वो फूटी आंख नहीं देख सकती। और तुम्हें वो कैसी लगती है? मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती। बुढ़िया जल्दी मर जाए तो मैं प्रसाद बांटूंगी, मैंने तो मन्नत भी मान रखी है। अचला बोली, वास्तव में तुम अपनी पसंद नापसंद के विषय में जो कहती हो उस पर अचानक विश्वास नहीं होता। जिस बुढ़िया के मरने की बात कर रही हो, क्या पता वही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो। तुम भी अभी से दिल लगी करना सीख गई हो, कहती हुई मृणाल ने अचला के गालों पर प्यार भरी हल्की सी चपत मार दी। अचला के अनुरोध पर मृणाल कुछ दिन और रुक गई। अचला को इस रहस्य की जानकारी हो गई थी कि मृणाल ऊपर से अपने जाने की बात करती अवश्य है, परंतु वास्तव में भीतर से इस विषय में वो गंभीर नहीं। इतने दिनों तक साथ साथ रहने से मृणाल के लिए अचला से वास्तविकता को छिपाए रखना संभव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अपने पति के साथ मृणाल की अतरंगता भी उसे खलने लगी थी। वो दोनों के आपसी संबंधों को सहज और पवित्र मानने के लिए अपने मन को समझाने की कितनी भी चेष्टा करती, किंतु उनका विश्वास डगमगाने लगता। महीन की गंभीरता उसे ढोंग लगती और उसे देखकर उसका मन और अधिक दुखी हो उठता। वो सोचती कि यदि महीम को मृणाल का हंसी मजाक पसंद नहीं तो वो उसे ऐसा करने से रोकता क्यों नहीं, या फिर नहले पे दहला मारकर उसे सदा के लिए खामोश क्यों नहीं कर देता है, या फिर उसका मजा लेते हुए उससे परेशान क्यों नहीं है। ऐसा कुछ ना करके मृणाल के हंसी मजाक से महीम का मुंह छिपाना, लज्जित होना और यहां वहां भागने की चेष्टा करना कुछ समझ में ना आने वाली विचित्र बात लगती है। इसलिए उसके संदेह को बल मिलता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। महीम किसी रहस्य के प्रकट हो जाने के भय से ही कन्नी काटता फिरता है। इसके अतिरिक्त वो ये भी सोचने लगी है कि केवल कुछ दिनों के ही परिचय से उसे इस स्त्री से इतना गहरा लगाव हो गया है कि उससे बिछड़ना उसे दुखद लग रहा है। तो फिर इतने दिनों तक
स्त्री पुरुष के साथ रहने पर दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षित न होना कैसे संभव है? मृणाल के रसोई घर में प्रवेश करते ही उड़िया ब्राह्मण काम से छुट्टी पर जाता था। आज भी वो आराम से घूम फिर रहा था। अचला को इस बात की जानकारी पहले नहीं थी, किंतु अब वो साथ ही साथ इस सत्य से भी भली प्रकार परिचित हो गई थी कि महीम के लिए भोजन बनाने और उसे अपने सामने बिठा कर खिलाने में मृणाल को एक प्रकार के अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती थी, और इसीलिए वो किसी भी मूल्य पर इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। आज सवेरे अचला अचानक मृणाल से बोली, दीदी आज तुम्हारी छुट्टी है। कुछ समझ ना पाती मृणाल ने पूछा, दीदी किस काम से छुट्टी? अचला बोली, आज रसोई मैं बनाऊंगी। चकित हुई मृणाल बोली, क्यों ऐसा अनर्थ करने जा रही हो दीदी? अचला ने कहा, इससे किसी विकल्प के लिए कोई अवकाश नहीं। घर में मैंने कितनी बार रसोई बनाई है, इसीलिए मुझे अच्छा अभ्यास है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं। अचला की जिद से मृणाल का चेहरा उतर गया। वो साहस करके बोली, मेरे रहते तुम रसोई के धुएं में अपना दम घोटने के लिए क्यों जाओगी? पलटकर उत्तर देती हुई अचला बोली, फिर महाराज के रहते हुए तुम्हें भी कष्ट झेलने की कोई आवश्यकता नहीं, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। अचला की जिद के पीछे के कारण को ना समझने पर भी गंभीर बनी मृणाल रोषावेश में फुंकारती हुई बोली, वारी छोकरी, मेरा सब कुछ छीनकर भी क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? अरे दो चार दिन अपने हाथ से उन्हें खाना खिला दूंगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? इतना छोटा दिल है तेरा, लगता है तू भी सोतिया डाह से जलने लगी है। अचला का पनपता संदेह विश्वास में बदल गया। मृणाल के ईर्ष्या के ताने से अचला के तन बदन में आग लग गई। फिर भी उसने अपने ऊपर संयम रखते हुए दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। अचला को गुस्सा हुए देखकर मृणाल ने विवाद करना उचित ना समझा। शांत स्वर में बोली, ठीक है तुम ही बनाना, चलो तुम्हें यह सब बता दूं कि कहां क्या रखा है। महीम के घर पर होने से अनजान दोनों स्त्रियां उसे अपने सामने देखकर हैरान हो गई। अचला को संबोधित करता हुआ महीम बोला, जितने दिन मृणाल यहां है इसे खाना बनाने दो। अचला की आपत्ति के कारण को जानते हुए भी महीम ने स्पष्ट रूप से कुछ कहना उचित नहीं समझा। महीम के कथन से अचला जल भुन गई और अपने फैसले की घोषणा करती हुई बोली, आज तो खाना बनाने का मैंने मन बना लिया है। कहकर उत्तर की प्रतीक्षा ना करके अचला जल्दी से रसोई घर की ओर चल दी। अचला जिद करके रसोई बनाने को तैयार हुई थी, इसीलिए इस काम में निपुण होने पर भी वो अपना पूरा ध्यान और मन वहां ना लगा सकी। मृणाल का सारा व्यवहार चलचित्र के सामने उसके नेत्रों के आगे मंडराने लगा। उसे ऐसा लगा कि महीम उसके प्रति अनुरक्त और समर्पित नहीं है। अपने विवाह से पहले सुरेश के साथ हुए संघर्ष के समय महीम के व्यवहार को जोड़ तोड़ कर देखती हुई अचला को लगा कि महीम ने उससे विवाह किया अवश्य है, किंतु उसकी उदासीनता इस बात का प्रमाण है कि वो इस संबंध से प्रसन्न नहीं है। वो ये भी नहीं भूली कि उसके पिता द्वारा महीम से अचला का विवाह ना करने के निश्चय को जानकर महीम का सर्वथा अप्रभावित रहना भी इस बात की पुष्टि करता है। अपने आने के दिन से ही अचला और मृणाल इकट्ठे बैठकर खाना खाती हैं, इसलिए आज अचला ने हरिया की मां को मृणाल को बुलाने के लिए भेजा तो उसने आकर बताया कि वो बुखार से पीड़ित है और खाने की इच्छा ना होने की कह रही है। अचला स्वयं मृणाल के पास चल दी और आंखें मीच कर पड़ी मृणाल से उठने और खाना खाने का आग्रह करने लगी। हंसती हुई मृणाल ने तबीयत ठीक ना होने से क्षमा करने की कही। अचला ने पूछा, तबीयत को क्या हुआ है? बुखार चढ़ा है, आज उपवास कर लेने से ठीक हो जाएगा, तुम जाकर खा लो बहन। मृणाल के माथे को छूकर अचला बोली, दीदी क्यों मुझे मूर्ख बनाती हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, चलो उठकर खाना खा लो। मृणाल सूखी हंसी हंसकर बोली, गले से नीचे खाना उतर नहीं सकेगा,
सच मानो तबीयत ठीक होती तो क्यों अपने को भूखा मारती।
चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं और वहां बैठती हूं, तुम चुपचाप खा लो,
अचला ने कठोर स्वर में कहा। सामने बैठी बहन को भूखा रखकर भोजन करने की शिक्षा हमें नहीं मिली। यदि बहन से कुछ खाया ही ना जाए तो
क्यों नहीं खाया जाए, कुछ कारण भी तो हो।
वास्तव में तुम्हारे तन को कुछ नहीं हुआ, मन में क्रोध है, इसीलिए यदि तुमने अपने साथ मुझे भी भूखा मारने की ठान रखी है तो तुम्हारी इच्छा।
हां अपने मन की बात साफ साफ बता दो ताकि ना मैं दुखी हूं और ना ही तुम्हें परेशान करूं।
क्रोधावेश में आई मृणाल तत्काल उठकर बैठ गई और अपने पति की शपथ लेकर बोली, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं, किंतु सच मानो खाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है।
चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूं।
अचला बोली, क्या बुखार आदि ये सब दिखावा है।
मृणाल द्वारा उत्तर ना देने पर कुछ देर तक उसके मुंह पर देखती हुई और लंबा सांस छोड़ती हुई अचला बोली,
अब समझी, यदि तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि मेरा पकाया खाना तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेगा तो मैं इस प्रकार हट करके तुम्हें परेशान क्यों करती। इसके अलावा मुझे तुम्हारी इस तरह खुशामद करते हुए दास दासियों के सामने नीचा ना देखना पड़ता।
चलो जो हो गया सो हो गया, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करती हूं।
हां एक कटोरा दूध रखा है, यदु को भेजकर कुछ संदेश मंगवा लेती हूं, वो लेने में तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।
पहले तो मृणाल हक्की बक्की रह गई, बड़ी कठिनाई से उसने अपने को संभाला, फिर भी मुंह से कुछ कहना संभव ना हुआ।
अचला ने तुनक कर फिर पूछा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो।
आंचल से आंसू पोंछती हुई मृणाल बोली,
ये सब अभी रहने दो। कुछ देर तक फिर भी उत्सुक बनकर खड़ी अचला फिर से निराश होकर धीरे से चल दी।
मृणाल ने सिर उठाकर अचला की ओर देखने तक की जरूरत नहीं समझी, वो जानती है कि अपनी सास के लिए वो रसोई तैयार करती है और उसकी सास पुराने विचारों की होने के कारण शुद्ध अशुद्ध के प्रति अत्यंत गंभीर है। यदि उसे मृणाल के अचला के हाथ का पका खाने का पता चल गया तो वो उसके हाथ से जल तक ग्रहण नहीं करेगी। मृणाल ने अभी तक अचला को इस दंभ के विषय में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा था। रसोई में जाकर अचला ने बिखरे सामान को समेटा और सारी व्यवस्था को निपटाकर चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर सो गई। उसका मन यही कहता था कि मृणाल द्वारा उसका छुआ ना खाने के पीछे उसकी घृणा के अलावा और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता था। यदि यह अनुमान सच ना होता तो मृणाल इस प्रकार चुप्पी ना साधे रहती। वास्तव में उसे समझ लेना चाहिए था कि कलह से शुरू हुए इस प्रभात वाले दिन किसी को दोपहर का खाना नसीब होना संभव नहीं था। तीसरे पहर अचला के घर के बाहर गाड़ी से उतरी मृणाल अचला की कोठरी में जाकर बोली,
भाभी घर जा रही हूं, जाने से पहले मिलने आई हूं, फिर कभी बुलाओगी तो हाजिर हो जाऊंगी, इस समय चलती हूं।
कहने के बाद कुछ देर के लिए रुकी मृणाल फिर बोली,
बहन जाते वक्त मुझसे बात भी नहीं करोगी।
फिर वो उत्सुक दृष्टि से अचला की ओर देखने लगी। अचला ने मुंह तक नहीं खोला, वो सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। बाहर निकलती हुई मृणाल ने महीम को आता देखा तो उसे वो नमस्कार करने लगी। महीम बोला, बिना कुछ खाए पिए घर से विदा होना अच्छा नहीं, आज रात के लिए रुक जाओ, कल सुबह चली जाना।
अस्वीकृति में सिर हिलाती हुई मृणाल बोली, नहीं ये नहीं होने का, गाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे जाने की अनुमति दो, फिर जब कभी बुलाओगे आ जाऊंगी।
कहती हुई मृणाल ने धरती पर माथा टिकाकर प्रणाम किया और बोली,
देखो मुझे एकदम भुला ना देना, कभी बुलाने की कृपा अवश्य करना।
मजाक करता हुआ महीम हल्केपन से बोला, सच ही तो कहा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए अपने स्वभाव को बदलना सरल नहीं होता।
हंसती हुई मृणाल बोली, बिल्कुल सच है बिल्कुल सच।
कहती और हंसती हुई वो गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। मृणाल के इस तरह चले जाने की अचला ने कल्पना नहीं की थी।
कोठरी में अकेली बैठी अचला सोचने लगी कि उस मूर्खा ने ना तो स्वयं कुछ खाया और ना ही मुझे खाने दिया। उसके इस अपराध के लिए उसे क्या दंड दिया जा सकता है? वास्तव में अपने प्रेमी पर घृणा करने का आरोप जैसा कोई दूसरा भारी दंड हो ही नहीं सकता। अचला मृणाल के प्रति इस प्रकार का मनोभाव बनाने को तत्पर थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो अपने ब्राह्म समाजी होने के कारण अपने से घृणा करने वाली मृणाल को दिन रात उठते बैठते ताना उल्हाना देकर उसकी नाक में दम कर देगी। किंतु अब मृणाल के अचानक चल देने से उसकी मन की मन में ही रह गई। इतने पर भी बिना कुछ खाए पिए मृणाल को विदा होते देखकर अचला द्रवित होकर आंसू बहाने लगी। किंतु उसी समय बाहर से आती हंसी को सुनकर उसके आंसू सूख गए और मन कठोर हो गया। दरवाजे की ओर से झांकती अचला दोनों मृणाल और महीम के विदा पूर्व मिलन के दृश्य को देखकर बिजली गिरने से जलकर राख हुए वृक्ष की भांति निर्जीव हो गई। थोड़ी देर में महीम के कोठरी में प्रवेश करते समय अचला का धैर्य और संयम चूक गया था। फिर भी अपनी शिक्षा और संस्कारों के कारण वो अपनी शालीनता और मर्यादा को तिलांजलि नहीं दे सकी। अपने को यथाशक्ति संभालती हुई अचला तीखे स्वर में बोली, मेरे विचार में नगरवासियों के ग्राम में आकर बसने से बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। कुछ देर तक अचला के चेहरे पर देखता हुआ महीम बोला, तुम शायद अपनी बात कर रही हो। मेरा सोचना था कि शुरू में तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत अवश्य होगी, किंतु धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हां, मृणाल के साथ तुम्हारी नहीं निभ सकी, अनबन हो जाएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि किसी के साथ झगड़ा करना उसके स्वभाव में है ही नहीं। तड़पती हुई अचला बोली, मैं ही झगड़ालू स्वभाव की हूं और सबसे लड़ती झगड़ती रहती हूं, यह जानकारी आपको कहां से मिली? महीम ने कहा, दिन भर से तुम भूखी प्यासी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी विवाद में उलझाना ठीक नहीं समझता, इसलिए इन बातों को इस समय रहने दो। जल भुनकर परेशान हुई अचला बोली, मृणाल दीदी ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, उनसे हंसी ठिठोली करते हुए तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं आया? दंग रह गया महीम बोला, ये तुम कैसा आरोप लगा रही हो? मैं सच्चाई बयान कर रही हूं। मैं तुमसे पूछती हूं कि मेरे किस अपराध के दंड स्वरूप मेरा इतना बड़ा अपमान किया गया है? परेशानी अनुभव करता हुआ महीम बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कहना क्या चाहती हो। ऊंची आवाज में चीखती हुई अचला बोली, मैं ये कहना चाहती हूं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसके लिए तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित किया है? व्याकुल होकर महीम बोला, किसने तुम्हारा अपमान किया है? आपने, और किसने? बिल्कुल झूठ। अचंभे में पड़ी अचला अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके बोली, मैं कभी असत्य भाषण नहीं करती। चलो इस विवाद को छोड़ो, यदि अपने आप को सत्यवक्ता मानते हैं तो मेरी जिज्ञासा का सही सही निवारण कीजिए। महीम अचला के चेहरे पर आंखें गड़ाए देखता रहा। अचला बोली, क्या मृणाल के आज के आचरण को आपका ग्रामीण सभ्य समाज अपमान का नाम नहीं देता? मुझे इसमें लपेटने का प्रयास क्यों कर रही हो? वो भी बताती हूं, पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लिया कि तुम्हारी सोच सही है, मान लेने का क्या अर्थ है? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए। चलो ठीक है, यहां का समाज इसे अपमान ही कहेगा। यदि ऐसा है तो इस अपमान को कराने का सामर्थ्य आपने ही जुटाया है। आपको यह भली प्रकार से पता था कि मेरा छुआ वो नहीं खाएगी। बोलिए, क्या मैं सही कह रही हूं या गलत? कहकर वो जलती आंखों से इस प्रकार महीम की ओर देखने लगी मानो उसके प्राण निकाले बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। परेशान हुए व्याकुल महीम के लिए मुंह से एक शब्द भी निकालना संभव ना हुआ। उसी समय बाहर से महीम को आवाज लगाता हुआ सुरेश कोठरी में दाखिल हुआ।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।